वहां पर सब लोगों से मिलने जुलने के बाद इप्सिता बहुत ही ज्यादा थक गई थी, क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत नहीं थी और अर्पिता ने ये बात नोटिस कर ली थी। इसलिए कुछ देर बाद उसने इप्सिता से कहा, भाभी सा, चलिए अब आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। फंक्शन रिसेंटली ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सारे गेस्ट भी चले गए हैं। इप्सिता तो जैसे यही चाहती थी, इसलिए जैसे ही अर्पिता ने उससे कहा, वो तुरंत ही वहां से उठकर उसके साथ अपने रूम की तरफ आ गई। जैसे ही इप्सिता अपने रूम में पहुंची, उसने देखा कि उसका पूरा कमरा लाल गुलाब और सफेद मोगरा फूलों से सजा हुआ था। साथ ही रूम के हर कोने में कलरफुल कैंडल्स चल रही थीं और पूरा कमरा बहुत ही अच्छे अरोमा से भरा हुआ था। जैसे ही वो दोनों अंदर आईं, इप्सिता पूरे कमरे को देखकर मुस्कुराने लगी। अर्पिता ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी सा, कैसी लगी आपको अपने रूम की डेकोरेशन? इप्सिता जैसे ही अंदर आईं, उसने कहा, सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच अर्पिता, हमें पता है आपने ये सब खुद करवाया है। तभी अर्पिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इधर आइए, हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा चेंज किया है। इतना बोलकर वो इप्सिता का हाथ पकड़कर सीधे बेड के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही इप्सिता ने अपनी नज़र उठाई, उसने देखा वॉल पर अभिमन्यु और इप्सिता की साथ में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर उन दोनों की एंगेजमेंट की थी। इप्सिता उस पिक को देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उस एंगेजमेंट की पिक को देखकर एंगेजमेंट वाला दिन याद आ गया और किस तरह से अभिमन्यु ने एंगेजमेंट वाले दिन उसकी हेल्प की थी। ये सब सोचकर इप्सिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर अर्पिता ने अपने मन में कहा, शायद भाभी सा को डेकोरेशन काफी पसंद आ गई है। इप्सिता अपने रूम की सारी डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहीं ना कहीं थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्पिता, हमें इतना स्पेशल फील कराने के लिए थैंक यू सो मच, ये सच में बहुत खूबसूरत है। अर्पिता इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने धन्यवाद में कहा, अब आप आराम से यहाँ बैठिए, हम थोड़ी देर में भाईसा को भेजते हैं। इप्सिता ये बात सुनकर बोली, अरे तुम रुको ना थोड़ी देर और। इप्सिता की ये बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, आज आप दोनों की फर्स्ट नाइट है, हम यहाँ पर रहकर भला क्या करेंगे। इतना बोलकर उसने खुद के कंधे पर अपना हाथ रखा और कमरे से बाहर निकल गई। इप्सिता को वो सारी डेकोरेशन देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अभिमन्यु के सामने आएगी। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, वो काफी हैवी लहंगे में थी और काफी ज्यादा थकी हुई भी लग रही थी। वो वहीं बेड पर बैठ गई और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथ में उठाकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं हम अभिमन्यु से कैसे नजरें मिलाएंगे और हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में सोचकर हमें इतनी ज्यादा नर्वसनेस क्यों हो रही है, इतना तो हम कभी अपने एग्जाम में भी नहीं घबराए। इप्सिता ये सारी बातें सोच रही थी, वहीं अर्पिता ने देखा कि अभिमन्यु हॉल में खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसने उसके पास आकर कहा, भाईसा, अब आप सारे काम छोड़िए और आप अपने रूम में जाइए, काफी रात हो गई है। अर्पिता की बात सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, हाँ बस ये कॉल रखते ही सीधे रूम में जाएंगे, आप ही जाकर रेस्ट करिए। अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप अपने रूम में जाने से पहले किचन में गई। उसने घर की नौकरानी को एक ग्लास केसर वाला दूध अभिमन्यु के रूम में भेजने के लिए कहा। उसकी बात सुनते ही एक नौकरानी तुरंत दूध को लेकर सीधे अभिमन्यु के कमरे में गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, इप्सिता जो कमरे के अंदर बैठी थी वो घबरा गई और उसने अपने मन में कहा, लगता है अभिमन्यु आ गए। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खुला और घर की एक नौकरानी अंदर आई। उसने ट्रे में पड़े हुए ग्लास के दूध को वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, रानी सा, ये अर्पिता दीदी ने भिजवाया है। इतना बोलकर उसने वो दूध का ट्रे वहीं टेबल पर रखा और वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। इप्सिता की दिल की धड़कनें अब और भी ज्यादा तेज हो गई थीं और वो अभिमन्यु के आने का इंतजार कर रही थीं। तभी उसकी नजर सामने रखे कुछ गिफ्ट बॉक्स पर गई और उन्हें देखकर इप्सिता ने उनमें से कुछ बॉक्स उठाया और उन्हें खोलकर देखने लगी। वहीं अभिमन्यु अभी भी हॉल में ही खड़ा था कि तभी समर्थ वहां पर आया और उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने जैसे ही अपना फोन रखा, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ था समर्थ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? समर्थ ने अभिमन्यु के पास आकर कहा, कितनी देर हो गई है भाभी सा को कमरे में गए और तुम अभी तक यहीं हो, जाओ रूम में, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। अभिमन्यु ने कहा, अरे हाँ, वो हम ऑफिस के किसी काम में बिजी हो गए थे, अच्छा हुआ तुम्हें हमें याद दिलाया, हम जाते हैं। इतना बोलकर उसने समर्थ के कंधे पर अपना हाथ रखा और तुरंत अपने कमरे की तरफ भागते हुए गया। समर्थ ने उसे जाते हुए देखा और उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, पता नहीं अर्पिता ने उन दोनों की जरूरत के सारे सामान को तो पहुंचा दिया था या नहीं, पता नहीं उन्होंने चेक किया था या नहीं, जाएंगे तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, एक काम करता हूँ अर्पिता से ही पूछ लेता हूँ। इतना बोलकर समर्थ सीधे अर्पिता के कमरे की तरफ गया। वहीं अर्पिता अपने कमरे में थी
और शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। तभी समर्थ उसके कमरे के पास आया। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी समर्थ ने दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, अर्पिता। अर्पिता ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो पीछे की तरफ मुड़ी और उसने समर्थ को दरवाजे पर देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समर्थ अंदर की तरफ आया और उसने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या आपने अभिमन्यु और भाभीसा की जरूरत के सारे सामान को उनके कमरे में भिजवाया था ना? एक्चुअली हम दूसरे काम में बिजी हो गए थे तो हम चेक नहीं कर पाए, और अब अभिमन्यु कमरे में चला गया है। अगर वहां जाकर देखूंगा तो ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। उसकी बात सुनकर अर्पिता ने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, हाँ, हमने सारा सामान भिजवा दिया था, आप टेंशन मत लीजिए। इतना बोलकर अर्पिता समर्थ के चेहरे की तरफ देखने लगी। समर्थ ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, ओके, गुड नाइट। इतना बोलकर वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी अर्पिता ने उसे जाते हुए देखकर अपने मन में कहा, समर्थ, आपने हमें अपने दिल की बात बता दी थी और शायद सही समय आ गया है कि हमें भी आपको अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, वरना हम नहीं चाहते कि पहले ही सब कुछ इतनी लेट हो चुका है तो अब और लेट हो। हमें अपने दिल की बात आपको बतानी चाहिए। अर्पिता ये बात सच ही कह रही थी कि तभी समर्थ जो कमरे से बाहर जाने वाला था, अर्पिता ने उसको आवाज लगाते हुए कहा, समर्थ, एक मिनट रुकिए। समर्थ ने जैसे ही अर्पिता की बात सुनी वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ अर्पिता। अर्पिता दो कदम आगे बढ़कर आई और उसने समर्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जब उस दिन हमें ये बात समझाई कि जयराज हमें डिजर्व नहीं करता और हम उससे बहुत बेटर डिजर्व करते हैं, हमें वो बात समझ में आ गई है। उसके बाद हमें समझ आया कि आप सच कह रहे थे, वो जयराज हमारे काबिल नहीं थे, और शायद अगर आप हमें ना समझाते तो हमें समझ में भी ना आता। उसके लिए थैंक यू सो मच, और हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारी इतनी फिक्र करने के लिए भी। समर्थ ने जैसे ही उसकी ये सारी बातें सुनी, उसने अर्पिता के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अर्पिता, हमने ये सारी बातें समझने के साथ साथ आपसे कुछ और भी कहा था।
अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, और जैसे ही समर्थ ने उसकी बात सुनी वो उसके करीब आते हुए बोला, तो बताइए, हमें अपने दिल की बात आप इतना क्या सोच रही हैं? जैसे ही अर्पिता ने समर्थ की ये बात सुनी, उसने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, सच बताएं तो हमें ऐसा लगता है समर्थ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम शायद आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करते। जैसे ही समर्थ ने ये बात सुनी वो कन्फ्यूज होते हुए बोला, क्या बोल रही हैं आप अर्पिता? क्या मतलब है कि आप हमें डिजर्व नहीं करती? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। वो अपने दिल की बात समर्थ को बताना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात पता थी कि समर्थ ने आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, और ना ही उसने किसी से शादी की है, जबकि अर्पिता ने जयराज से शादी भी की और इतने दिनों तक उसके साथ रही भी। ये सारी बातें सोचकर अर्पिता ने समर्थ से जब ये सब कहा, तो समर्थ उसकी बात समझते ही उसके करीब आया और उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, आप क्या सोच रही हैं अर्पिता? आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप हमारा पहला प्यार हैं और आखिरी भी। हम आपके अलावा और किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते, और अगर आप ही ऐसा सोचेंगी तो कैसा चलेगा? प्लीज़ इन सब चीज़ों को भूल जाइए और ऐसा सोचिए कि आपकी लाइफ में जयराज जैसा कोई आदमी कभी आया ही नहीं, और ना ही आपकी शादी हुई। आप इमेजिन करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इस राजमहल की राजकुमारी हैं जो अपनी शादी से पहले खुशी से यहाँ पर रहती थी। मैं बस आपके दिल की बात जानना चाहता था।